نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبق نمبر 254 آیت نمبر 1 سے 13 سورة الممتحنة. لیسن نمبر 254 آیت نمبر 1-13 سورة الممتحنة. چند باتیں سورة کے بارے میں. سورة الممتحنة ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی 60 یعنی 60 نمبر کی سورت ہے اور سورت کا نام الممتحنہ آیت نمبر 10 میں سے ہے. اس کو دونوں طرف سے پڑھ سکتے ہیں, لفظ ممتحنہ اور ممتحنہ. اگر آپ لفظ دیکھیں تو اس کا روٹ مہن ہے, پیچھے ہم پڑھ چکے سورت حجرات میں امتحن قلوبہم للتقوی, تو میم ہا نون اسی سے لفظ امتحان بھی ہے. جب ممتحن ہو تو امتحان لینے والا, انگلش میں اس کو ایگزامینر کہتے ہیں, کمرہ امتحان میں جو لوگ پھر رہے ہوتے ہیں ان کو ممتحن کہتے ہیں. اسی سے پھر مؤنث ہوا ممتحنہ. اب جب اس کو ممتحنہ کہتے ہیں تو امتحان لینے والی, ٹھیک ہے, اور اس سے مراد ہے یہ صورت, یعنی یہ صورت امتحان لینے والی ہے. کس چیز کا؟ محبتوں کا. اس پوری صورت کا جو مین تھیم ہے نا, وہ محبتوں کا امتحان ہے, اور خاص طور پہ اللہ کے راستے میں جب انسان نکلتا ہے تو جو پیارے راستے میں آتے ہیں اور ان کا کچھ اور رخ ہے زندگی کا اور ہمارا کچھ اور, اور دن دن کی جو چوٹ پڑتی ہے, یہ پوری صورت ہمیں یہی کچھ سکھاتی ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ایک ایمان والا ہر وقت دو محاذوں پہ لڑتا ہے, ایک دشمنوں سے لڑتا ہے اور ایک پیاروں سے لڑتا ہے. دشمنوں سے لڑنا آسان ہوتا ہے, سر عام ہوتا ہے, کیونکہ دشمن سے لڑیں گے اگر اس کو گولی لگی تو آپ کو خوشی ہوگی, اس کو چوٹ پڑی تو دل میں کچھ نہ کچھ تو تسکین ہوگی کہ میں حق پہ تھا. لیکن جو دوسرا امتحان ہوتا ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. آپ امیجن کریں کہ آپ کے ہاتھ میں تیر ہے اور سامنے آپ کی ماں کھڑی ہے, تیر ہے اور سامنے بہن ہے اور شوہر ہے اور بھائی اور باپ ہے. ایسے حالات میں ایک انسان کسی کو تیر مار کے پھر بھی خود روتا ہے. ہم جب اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں, اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے, تو ہم جب دوسروں کو دوسرے راستے پہ دیکھتے ہیں تو بظاہر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں ان کی پرواہ نہیں رہی, اب ہم ان کے بغیر خوش ہیں اور ہم نے اپنی ایک الگ دنیا بنا لی. لیکن ایسی دنیا بنانے والوں کے دل کتنا دکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے, اسی کا اس صورت میں ہمیں دکھے گا. آپ انسانی جذبات کی مٹھاس معلوم کریں گے اس صورت میں کہ رشتہ ہوتا کیا ہے, اور خاص طور پہ خون کے رشتے, اور خاص طور پہ اولاد اور بچے اور بیوی کیسے دین کے راستے میں فتنہ بنتے ہیں, اور اسی طرح بیویوں کے لیے ان کے شوہر کیسے فتنہ بنتے ہیں. تو لہٰذا ممتحنہ ہوگا تو یہ صورت لوگوں کا امتحان لینے والی ہے. اس کو ممتحنہ بھی پڑھا گیا, یہ بالکل وہی فاعل اور مفعول کا فرق ہے. اگر ممتحنہ ہو تو وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے. اس صورت کے آخر میں کچھ ایسی عورتوں کا تذکرہ ہے. اس صورت کا زمانہ نزول بالکل صاف ہے, کیونکہ اس میں تین ایسے واقعات ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت صلح حدیبیہ کے فوراً بعد نازل ہوئی. حاطب بن ابی بلتا کا ایک واقعہ ہے, ایک خط بھیجا تھا, ابھی انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے سناتی ہوں جب آیت آئے گی. اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد ہے. آیت نمبر 1-9 تک جو مضمون چلتا ہے وہ ہے رشتوں کی مٹھاس اور اللہ کے دین کے تقاضے. کس طریقے سے خاطب نبی بلتا سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی, اسی کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے کان کھول دیے کہ یہ محبتیں اپنی جگہ, لیکن دین کو داؤ پہ لگا کر ان محبتوں کو نبھانا یہ انسان کے لیے بعض دفعہ خسارے کا سودا بنتا ہے. دوسرا حصہ آیت نمبر 10 اور 11 ان دو آیات میں ہیں. اس میں ایک بہت اہم معاشرتی مسئلے کا فیصلہ کیا گیا جو اس وقت بہت ہی پیچیدگی پیدا کر رہا تھا. مکہ میں بہت سی مسلمان عورتیں ایسی تھیں جن کے شوہر کافر تھے, اور وہ کسی نہ کسی طرح ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتی تھی. اسی طرح مدینہ میں بہت سے مسلمان مرد ایسے تھے جن کی بیویاں کافر تھیں اور وہ مکہ میں رہ گئیں, اور گھر گھر ٹوٹ رہا تھا. جب اسلام آتا ہے, جب بھی کل اسلام آیا تھا تو یہی فتنے تھے. یعنی جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہوا دین انسانوں کے عملی رویوں میں آتا ہے تو پھر ایسے فتنے ہر گھر میں ہوتے ہیں. ایک کسی اور سوچ کا ہے تو باقی سارے کسی اور ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. एक अल्लाह के खौफ से रो रहा है तो कुछ अल्लाह के खौफ से बेन्याज होकर न जाने क्या देख रहे। ऐसे वक्तों में क्या करना चाहिए वो इंशाल्लाह हमें इन आयात में मिलेगा। और हत्ता कि वहाँ तो ये सवाल तक पैदा हो जाता है कि क्या फिर उनसे रिश्ता इज़दवाज बाकी रहा कि न रहा। अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए इसका फ़ैसला कर दिया कि मुसलमान औरत के लिए काफिर शौहर हलाल नहीं है, और मुसलमान मर्द के लिए भी ये जायज़ नहीं कि किसी मुशरिक औरत को अपने निकाह में रखे। है बड़ा तल्ख फैसला था, लेकिन बहरहाल वो हुआ और ऐसा होता है। यही तो असल में इम्तिहान होता है। तीसरा हिस्सा फिर आयत नंबर 12 और 13, आखिरी दो आयात जो हैं, जिसमें नबी सल्लम को हिदायत दी गई कि वो औरतें जो इस्लाम कबूल करके आपके पास आती हैं तो फिर उनसे कुछ इम्तिहान लीजिए। बैत कहते हैं जिसको, असल में उसी की वजह से सूरत का नाम भी अलमुमतहिना है। जो बैत के अल्फाज थे उनमें बहुत सारे अल्फाज थे जो इंशाल्लाह हम इधर देखेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि 28वां पारा ज़्यादा औरतों के और घरेलू मसाइल से मुतल्लिक है, और ख़ास तौर पे वो मसाइल जो घर में एक फ़र्द के दीन पे आने के बाद उठते हैं। कभी वो फ़र्द मर्द होता है और कभी वो औरत होती है। तो हम शुरू करते हैं सूरत को, और इसके साथ साथ फिर इंशाल्लाह ताला तारीख के वाक़यात लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस सूरत का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। ए ईमान वालो, न बनाओ मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को अपने जिगरी दोस्त। क्यों? अल्लाह ताला इतना भी कह देते तो काफ़ी था, क्योंकि एक इंसान की तो ये कोई औकात ही नहीं है कि वो क्यों करा पूछे। कि अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं कि भाई अगर तुम ईमान लाए हो, अगर तुम मेरे रास्ते में जिहाद के लिए निकले हो, अगर तुम मेरी रजाजुई के लिए वतन छोड़ चुके हो, तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। क्यों? इसका जवाब है आगे। आप कह सकते हैं क्यों का जवाब क्या? तुलकून इलैहिम बिल मवद्दा। तुम तो इजहारे मोहब्बत करते हो इनसे, लेकिन वक़्त कफरू बिमा जाअकुम मिनल हक्की। हालांकि वो इनकार करते हैं इस दीन हक का जो तुम्हारे पास आ चुका। ये है पहली वजह, क्यों ना बनाओ काफिरों को दोस्त, इसलिए कि तुम तो इनसे मोहब्बत करते हो, तुम इनकी तरफ दोस्ती की तरह डालते हो, तुम इनकी तरफ बढ़ते हो, लेकिन जो हक तुम्हारे पास आया है इसको मानने से वो इनकार कर चुके। ये थी पहली वजह। जो मैं इस वक्त तफसीर करती हूँ ना, इसको तफसीरी तर्जुमा कहते हैं। यकीन करें, अगर आप सिर्फ अपना जो पारा है उस पर ये छोटे छोटे बीच के मैं जो दो बातों को जोड़ते हुए या जहाँ रुकती हूँ, जहाँ से आगे बात करती हूँ, किसी भी तरह से इसको अपने पारे पे लिख लिया करें, एक रंग से लिख लें, क्यों, जवाब, शर्त, आप देखेंगे बाद में इंशाल्लाह मफहूम समझने में आपको बहुत फ़ायदा होगा। वरना स्टूडेंट्स के साथ होता क्या है कि वो अलग तफसीर भी पूरी समझ चुके होते हैं, कुरान की तजवीद लफ्जी तर्जमा भी आता है, लेकिन आयत से रिलेट नहीं कर पाते। तो बहरहाल जितनी तवज्जो से इसको सुनेंगे इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। तो पहली वजह क्या है? क्यों ना करो दोस्ती इनसे, क्योंकि तुम तो इनसे मोहब्बत करते हो और ये तुम्हारे पास जो आ चुके हैं उसका कुफर करते हैं। यहाँ नोट कीजिएगा कि तुम मोहब्बत कर रहे हो लेकिन ये तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन तुम्हारे पास जो हक है उसका इनकार करते हैं। ये है असल मसला। लोगों को आप नहीं बुरे लगते, आपसे उनको बड़ी दोस्ती है, मोहब्बत है, आप उनको प्यारे भी लगते हैं, वो आपके अखलाक की गवाही भी आप बड़ी देते हैं कि आपका अखलाक बड़ा अच्छा है, वैसे आप बड़े प्यार से मिलती हैं। लेकिन मसला क्या है? कद कफरू बिमा जाअकुम मिनल हक्की, उनको वो हक नहीं अच्छा लगता जो आपके पास था। दूसरी वजह, युखरिजूनर रसूल, उन्होंने निकाल दिया रसूल को। कहाँ से निकाल दिया? मक्का से निकाल दिया। और सिर्फ रसूल को नहीं, वह इयाकुम, और तुमको भी तो निकाल दिया। इयाकुम में वो सारे सहाबा और सहाबियात है जो नबी सल्लम के साथ या उस दौर में हिजरत करके मक्का से मदीना चले गए थे। कि देखो तुम ऐसे लोगों से क्यों दोस्तियाँ करते हो जो तुमको और तुम्हारे रसूल को बग़ैर किसी वजह के, हाँ सिर्फ एक वजह है, क्यों निकाला? अंतु मिनू बिल्लाहि रब्बिकुम, महज इसलिए कि तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर जो तुम्हारा परवरदिगार है, बस ये है तुम्हारा कसूर। इनकी रविश क्या है कि रसूल को और ख़ुद तुमको सिर्फ इस कसूर पर जिला वतन कर देते हैं कि तुम अपने रब अल्लाह पर ईमान लाए हो। लोगों को ये अच्छा नहीं लगता कि लोग अल्लाह को रब माने, लोग चाहते हैं कि हम उनको रब माने। हम उनसे नफे नुकसान रखें, हम उनसे डरें, उनसे मोहब्बत करें और दिस एंड दैट। तो फरमाया ऐसे लोग जो हैं इनको बता दो कि अगर तुमने ऐसा ही किया, अगर वाकई तुमने इन सारी बातों को सुनने जानने के बावजूद क्या किया। अब यहाँ से दूसरी तरह से हमें अंदाज सिखाया जा रहा है, इन कुंतुम खरजतुम जिहादम फी सबीली वब्तिगा अमरदाती। देखो अगर तुम जिहाद करने निकले हो मेरी राह में, सोच लो किसकी राह में निकले हुए हो, नफ्स की राह में, अपनी राह में, मुआशरे की राह में, भीड़ चाल है सब कर रहे हैं तो मैं भी चल पड़ूं, या वाकई मेरे रास्ते में निकले हो और वब्तिगा अमरदाती और मेरी रजाजोई के लिए, यानी अगर तो तुमने वाकई ये सब कुछ मेरे लिए किया है ना, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे राजी हूँ, तो फिर याद रखो इन्हें दोस्त ना बनाओ। यहाँ ये जुमला छुपा हुआ है, मखजूफ बोलते हैं इसको, इन कुंतुम खरजतुम का जवाब मखजूफ है, शर्त है ये, और इसकी जजा क्या है, ला तत्तखिजू। आप यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ ला तत्तखिजू का लफ्ज छुपा हुआ है, जैसे ज़मीरें छुप जाती हैं ना, और लेकिन तर्जमे में उसका मानी निकल आता है, तो कहा कि फिर इनको दोस्त मत बनाओ, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला और समझा रहे हैं, ऐसे लग रहा है बड़ी शफकत वाली माँ है और बच्चे को समझा रही है, देखो बेटा इसको दोस्त ना बनाओ, तुम तो इससे दोस्ती करते हो ये नहीं तुमसे करता, और तुम तो इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हो ये नहीं बढ़ाता, और इसने तो देखो तुम्हारे रसूल को भी निकाल दिया था, इसने तो फला मौके पे तुम्हारी माँ को तकलीफ़ दी थी, तुम्हारे बाप को दी थी, और तुम्हारा कहाँ ये दोस्त होगा। और वाकई फिर देखो अगर तुम मेरे बच्चे हो तो फिर तुम बस देख लो, अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो इन्हें दोस्त ना बनाओ, ये मफहूम है। फिर अल्लाह ताला मज़ीद बताते हैं कि मुझे तुम्हारा पता है, मैं ये बात तुम्हें कह रहा हूँ लेकिन मुझे ये साफ पता है कि तो सिरू न इलैहिम बिल मवद्दा, तुम बड़ी रासदारी से इनकी तरफ मोहब्बत का पैगाम भेजते रहते हो, यानी तुम छुपा कर इनको दोस्ताना पैगाम भेजते हो, हालांकि जो कुछ तुम छुपा कर करते थे और जो ऐलानियाँ करते हो सबको मैं जानता हूँ, वह अना आलमु बिमा अख्वई तुम, और मैं खूब जानता हूँ जो तुमने छुपा रखा है, वमा आलन तुम, और जो तुमने जाहिर किया। ऐसे नहीं लगता कि माँ के सामने बच्चे की चोरी खुल गई, वो छुप के किसी को मिलने जा रहा था या जा रही थी, माँ को पता चल गया, उसका कोई ख़त पकड़ा गया, कोई लव लेटर पकड़ा गया, कोई फेसबुक पे तस्वीर पकड़ी गई, कोई ईमेल खुली रह गई, कोई भी ऐसा राज था जो उसने राज रखा था, राज रहा ना और खुल गया। तो अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं वमई यफल हुमिनकुम, अब फिर सुन लो, अगर ये हरकतें की, ये काम किए तुम में से किसी ने, फ़कदुल सवासबील, तो समझ लो कि वो भटक गया सीधे रास्ते से। जिसने ऐसा कोई काम किया वो भटक जाएगा सीधे रास्ते से, उसको हक कहाँ मिलेगा, वो तो गुमराह हो गया। ऐसे बच्चे जो माँ बाप की बात नहीं मानते वो भला सीधे रास्ते पे कहाँ रहते हैं, बुरे दोस्त या बुरी दोस्तियाँ उनको तो पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। यहाँ बात पूरी नहीं हुई, अगली आयत में मज़ीद अल्लाह सुब्हान तआला 70 माओं से ज़्यादा अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं कि देखो ज़रा होश करना, ई यस कफ़ू कुम, और अगर वो तुम पर काबू पा ले, सा काफा, किसी चीज़ को पा लेना काबू पाने के मानों में है, महारत पाई जाती है इसमें, एक होता है खाली पाना वजदा, वो भी पाना होता है, लेकिन सकफा होता है महारत के साथ पाना, यहाँ मुराद है फतह पा ले तुम पर, कि देखो ये तुम्हारे दोस्त थोड़ी हैं, आज तो बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं लेकिन अगर इनको ज़रा सा मौका मिल जाए, यकूनू लकुम आदा अन, तो ये तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, ये दोस्त नहीं रहते ये दुश्मन बन जाते हैं। पीछे देखिए आयत एक में अदूब आया था, यहाँ आदा, अदूब जो लफ्ज़ है ये मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा सबके लिए आता है, जबकि आदा जमा है अदूब ही की, तो ये बहुत सारे दुश्मन, यानी फिर ये तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। अच्छा फिर जब कोई दुश्मन बन जाता है तो क्या करता है, व यबसुतु इलैकुम अयदियहुम व अलसिनतहुम बिस्सूई, ये है पहला हदफ दुश्मनों का, और बढ़ाएंगे तुम्हारी तरफ अपने हाथ और अपनी ज़ुबानें बुराई के साथ, यानी जो भी ऐसी बात होगी, खूब चर्ब जुबानी से वो तुम्हें नुकसान देंगे, तुम्हारे साथ दुश्मनियां करेंगे, हाथ से कैसे तकलीफ देंगे, तीर चलाएंगे, तलवार चलाएंगे, कुछ भी हाथों से इशारे करके तुम्हारे खिलाफ बातें करेंगे और जुबान से तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगंडे करेंगे। और सबसे बढ़कर जो बात खौफनाक है वो क्या है, वद्दू लौ तकफुरून, उनका हदफ क्या है कि काश तुम काफिर बन जाओ, बस इससे ज्यादा ना सोच लो। अब तुम खुद सोच लो कि क्या तुम्हें ये दोस्ती करनी है, कितना प्यार है अल्लाह को अपने बंदों से और कितना प्यार है अल्लाह को ईमान वाले बंदों से। ये और इसके अगली चंद आयात एक खास वाक्य के साथ है, मैं वो वाक्य आपके सामने रखती हूँ। हम सब पीछे पढ़ चुके कि सुलह हुदैबिया जब हुई, नबी सल्लम ने मक्का वालों के साथ माहदा किया और उस माहदे की ये शर्त थी कि 10 साल तक जंग नहीं होगी। पीछे हम पढ़ चुके सूरह फतह की डिटेल में। 2 साल भी ना गुजरे थे कि मक्का वालों ने सुलह हुदैबिया तोड़ दी और किसी का साथ दे दिया मुसलमानों के खिलाफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब बात पहुंची तो आपने इस मौके को बुनियाद बनाकर मक्का पर चढ़ाई का इरादा किया कि अब हम यहाँ हमला करेंगे, लेकिन आपने इस बात को राज रखा। ये वाहिद मौका था कि जिसमें पब्लिकली नबी सल्लम ने अनाउंस नहीं किया, क्यों? इसकी बहुत बड़ी हिकमत है। अल्लाह के नबी सल्लम ये चाहते थे कि वो अचानक मक्का में पहुंच जाए और जूं ही मक्का में पहुंचे तो मक्का वालों को पता चले कि हम आए हैं, तैयारी चूंकि नहीं होगी उनकी तो वो सरेंडर कर देंगे, और इस सूरत में बगैर खून बहाए मुसलमान मक्का को फतह कर लेंगे। अगर पहले से खबर मिलती, जाहरी बात है कि वो भी हथियार जमा करते, तीर तलवारें होती, तो खून बहने का खतरा था जो जंगों में बहता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की हुरमत को पामाल नहीं करना चाहते थे। ये थी वो बुनियादी वजह जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलती। वो कहते हैं ये तो बात नहीं है, ये तो दुरुस्त नहीं, ये अल्लाह के नबी पे बाज़ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि देखो देखो चुपके से वार कर दिए। नहीं, आप मक्का में खून नहीं बहाना चाहते थे। खैर, किस्सा मुख्तसर, चंद खास लोग जो थे उनको आपने बता दिया और बाकियों को नहीं बताया। इत्तेफाक क्या हुआ कि इन्हीं दिनों मक्का मौजमा से एक औरत आई, सारा उसका नाम था, अब्दुल मुत्तलिब की ये लौंडी थी, फिर आज़ाद होकर गाने बजाने का काम करती थी। इसने आकर नबी सल्लम से अपनी तंग दस्ती की शिकायत की, कुछ माली मदद चाही और कहने लगी कि मुझे दें। और इसने कहा कि बदर में तो आपने सारे काफिरों को मार दिया, वो बड़े बड़े लीडर अबू जहल, उतबा, शैबा, रबिया मर गए, ये ट्रॉस थी यानी तवायफ थी। तो कहने लगी ना वो महफिलें सजती हैं, ना वो कोई हुसन के किस्से हैं, मेरा तो काम धंधा ही नहीं चलता। ज़रा सोची कैसी औरत और कहाँ गई मदद करने मांगने। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों से, बनी अब्दुल मुत्तलिब और इन लोगों से मिलके कुछ मदद की, इसकी हाजत पूरी कर दी। इससे भी देखिए कि अल्लाह के नबी के अखलाक, हम होते तो उसको पकड़ के तो बेइज्जत कर देते। खैर, जब ये मक्का वापस जाने लगी तो एक मुखलिस सहाबी हातिब बिन अबी बलता, हा यानी हदीस वाली हा और तोए और बा, हातिब बिन अबी बलता, बदरी सहाबा थे, मुखलिस थे, गज़वे बदर में चूँकि शिरकत कर चुके थे। इन्होंने चुपके से उसको एक ख़त दिया जो मक्का के सरदारों के नाम था और 10 दीनार दिए कि देखो इस राज को किसी पे फाश ना करना और छुपा कर ये ख़त उनको दे देना। अभी वो मदीना से रवाना ही हुई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से अल्लाह ताला ने ये ख़बर दे दी। आपने हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर और मिक़दाद बिन अस्वद रदी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, इन तीनों को भेजा और कहा तेज़ी से जाओ, रोज़ा खाख एक जगह का नाम है, वहाँ मदीना से ये तकरीबन 12 मील दूर है जगह, तुम्हें एक औरत मिलेगी, इसके पास मुशरिकीन के नाम खातिब का एक ख़त है, जिस तरह भी हो वो ख़त लेके आओ, अगर वो ख़त दे दे तो उसे छोड़ देना। सोचिए ज़रा आपका रहम, इसको छोड़ देना, क्योंकि रोज़ी रोटी के लिए उसने लिया, उससे इस्लाम को कोई नुकसान नहीं था। आपने फरमाया लेकिन अगर ना दे तो कत्ल कर देना। तीनों निकले। रास्ते में एक सहाबी ने हज़रत अली से कहा कि थोड़ा आहिस्ता चलते हैं, क्या पता वो औरत इधर उधर कहीं मिल जाए। तो ने फरमाया कि मेरा ईमान है कि अगर अल्लाह के नबी ने कहा कि रोज़ा खाख में मिलेगी तो वो वहीं मिलेगी। सरपट घोड़े दौड़ाते वहाँ पहुँच गए। यहाँ से भी ईमान देखिए कैसा प्यारा ईमान था। ये नहीं करते थे नहीं शायद ऐसा ना हो वहाँ ना हो, और बिल्कुल वही हुआ। रोज़ा खाक पर इन्होंने इस औरत को देखा, उसको रोका, ख़त मांगा। कहने लगी मेरे पास तो कोई ख़त नहीं है। कहने लगे कि दे दो वरना हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। खैर जब उसको थोड़ा सा डराया तो कहते हैं उसने अपने बालों की चुटिया के अंदर एक ख़त गुंदा हुआ था वो निकाल के दे दिया। और जब खोला उसने कहा उनको कहा तुम जाओ ये ख़त लिया। इन्होंने नबी सल्लम के पास आ गया। अब आप ज़रा सोचिए कि सिचुएशन क्या बन रही है ना। ख़त सबके सामने पढ़ा गया, खोला तो ख़त के अंदर पूरा मजमून हातिब बिन अबी बलता के ख़िलाफ़ गद्दारी का सबूत था। उसमें लिखा ये था कि मिन खातिब बिन अबी बलता, खातिब बिन अबी बलता की तरफ से इला रूसाए कुरैश, कुरैश के रईसों की तरफ। और उसमें उन्होंने साफ तौर पे लिख दिया था कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर, तुम जो कर सकते हो कर लो और हमले की तैयारी है। और इस तरह से कहा कि मेरे इस ख़त की बुनियाद पे जो है तुम मेरे ऊपर कोई एहसान कर दो। किस्सा मुख्तसर, अब ख़त मौजूद था। आप सोचिए ओपन, जिसको आप कह सकते हैं कि विटनेस मौजूद थी, कोई छुपी बात नहीं थी। खैर अब जब ये बात हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खातिब से पूछा कि ये क्या है। कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मामले में जल्दी ना करें, मैंने जो कुछ इसमें किया है या लिखा है इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं कि मैं काफिर हो गया या मैं मुर्तद हो गया हूँ, यानी इस्लाम का कोई राज दे रहा हूँ या इस्लाम के बाद अब मैं कुफर को पसंद करने लगा, ऐसा कुछ नहीं। असल बात क्या है कि मेरे रिश्तेदार अभी मक्का में फंसे हुए हैं। जैसे हिजरत करके बाकी लोग आ गए थे लेकिन कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स थे वो सबको साथ नहीं ला सके। कहने लगे पहली बात है कि मेरे रिश्तेदार वहाँ भी मौजूद हैं और मैं कुरैश का भी नहीं हूँ, और कुरैश अपने कबीलों वालों को कुछ नहीं कहते थे, दूसरों को बहुत मारते थे। कहने लगे कि मैं यहाँ जब से आ गया हूँ तो मेरे रिश्तेदार पीछे हैं, जो ही आप हमला करेंगे तो मेरे बच्चों और बीवी के ऊपर वो ज़रूर जुल्म उठाएंगे क्योंकि उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो मैंने ये ख़त इस सोच के साथ लिखा है कि उन पे एक एहसान कर दूँ कि देखो जंग हुई तो मेरे बीवी बच्चों को कुछ ना कहना, लेकिन मेरे दिल को ईमान है कि आप हमला करेंगे तो फतह आपको ही होगी, मुझे यकीन है फतह होगी। मैंने ख़त लिख भी दिया, मेरा ईमान है कि आपको ही होगी, और इस किस्म की बातें कहीं, और लिहाजा ये बात मैंने लिख दी। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बात सुनी तो फरमाया कद सदका कुन, ए खातिब तुमने सच्ची बात कही। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के अंदर ईमान की गैरत बहुत थी। जो ही उन्होंने इस बात को सुना और सबूत सामने मौजूद था, कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस मुनाफिक की गर्दन मार दूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसने ख़यानत की है और अल्लाह के साथ भी की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं उमर, क्या तुम नहीं जानते कि ये बदर में शरीक हुआ था और अल्लाह ने अहले बदर के लिए कह दिया था कि आज के बाद तुम जो कुछ भी कर लो तुम्हें इसकी इजाज़त है। तो आपने फरमाया कि नहीं मैंने तुमको माफ़ किया। इस आखिरी फिक्रे के बाद जब अल्लाह के नबी ने कहा कि कद गफ़रतु लकुम या इन्नी गाफिरु लकुम सअग़फिर लकुम, ये सारे जुमले आते हैं, कहते हैं ये लफ्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सुनने थे कि हज़रत उमर रोने लगे और उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। कैसा प्यारा ईमान था। मैं हैरान होती हूँ कभी कभी हालात को देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि बाज़ दफ़ा अल्लाह सुबहाना तला एक ऐसे हालात पैदा कर देता है कि मुखलिस साथियों के दिलों में भी शक आने लगता है। वो भी सोचते हैं कि ये जल्दी है, वो भी सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ तहम्मुल से पी जाते हैं, कुछ ज़ुबान के तेज़ होते हैं बोल देते हैं, कुछ सोचों के तेज़ होते हैं वो सोचने लग जाते हैं। जैसे हमारी ज़ुबान चलती है ना इस तरह हमारी सोच भी चलती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज़ुबान चलती है तो दूसरों को पता लग जाता है, जब सोचें चलती हैं ना तो पता नहीं लगता। ज़ुबान की ही हिफाजत नहीं करनी, सोचों की भी हिफाजत करनी है। कुछ लोग सोच को भी रोक लेते हैं ज़ुबान को रोकने की तरह। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु उस वक़्त नहीं समझ सके कि इसमें कितनी बड़ी खैर है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम की हिकमत और फरासत इसको जान गई। और हैरत की बात है कि सुलह हुदैबिया एक ऐसा मौका है कि दो बार उमर फ़ारूक बोल उठे, एक उस वक्त बोल उठे कि क्या ज़रूरत है इस तरह के फ़ैसले करने की, और एक यहाँ बोले। आपको होता है कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में रोया करते थे, कहते थे मैंने अपने इस जुर्म पे कि जो मैं नबी सल्लम के आगे बोल पड़ा या मैंने सोच ही लिया, मैंने कितने ग़ुलाम आज़ाद किए हैं, کہ اللہ مجھے معاف کر دے کفارے کے، اور کتنے روزے رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ گناہ معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو اس پہ یہ آیات نازل ہوئیں، اور بالکل آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے میں یہ کھول کے بیان کر دیا کہ نمبر ایک، اب اس میں سے بہت سارے میسج ہیں، آیتیں تو ہم کر چکے ہیں، ہم آگے کریں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ آیتیں کتنی کلیئر ہیں، کتنی محبت اور کن طرح کی چیزوں کی باتیں کی گئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، تم تو ان کی طرف ہاتھ ڈال رہے ہو، اگر تم سوچتے ہو کہ ان کو بتا دو گے تو یہ تمہارے بیوی بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ پھر بھی کہیں گے۔ تم تو ان کی طرف محبت ڈالتے ہو، لیکن یہ تو پہلے کفر کر چکے، انہوں نے تمہارے رسول کو نکالا، تم کو نکالا، لیکن اس کے باوجود بھی تم ان سے اس طرح کی باتیں کرو گے، تو مت سوچو کہ تم ان کے اوپر احسان کر کے اس کو بچا لو گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان کے اوپر بہترین معاملہ کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خاطب بن ابی بلتا کو معاف کیا، بلکہ آئندہ ان کو اپنے ساتھ مشوروں میں شامل رکھا، اور اس سے بہت ساری عمل کی باتیں نکلتی ہیں۔ ہم یہ قصہ پورا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ کوئکلی پیچھے سے آیتوں کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ اب اس واقعے کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو، اپنے اور میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا اس آیت کا تعلق صرف خاطب بن ابی بلتا سے؟ قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ غیروں کو اپنا نہ بناؤ۔ تم ان کو اپنا بنانا چاہتے ہو، یہ بنتے کوئی بھی نہیں۔ یہ حکومتوں کو بھی اعلان ہے، یہ افراد کو بھی اعلان ہے، اور یہ آرگنائزیشن، اداروں، مسجدوں، سکولوں کو بھی کہا گیا کہ سوچ کے دشمنوں کو دوست بنانا۔ عربی زبان میں ایک کہاوت ہے کہ انسان کے تین دشمن ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، انسان کا اپنا دشمن اس کا دشمن ہے۔ دوسری بات، انسان کے دوست کا دشمن بھی اس کا دشمن ہوتا ہے، رائٹ؟ جو آپ کی دوست ہے ان کی دشمن بھی آپ کی دشمن ہوگی۔ اور تیسری، آپ کے دشمن کا دوست، یعنی آپ کا دشمن، آپ کے دوست کا دشمن، اور آپ کے دشمن کا دوست۔ جس کی اللہ سے محبت ہوگی نا، وہ کافر کو کبھی اپنا دوست نہیں بنائے گا، کیونکہ اللہ ہمارا دوست ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے انسان زندگی میں کبھی بھی اس چیز کو نہ بھولے کہ جو خدا کا نہ بنا وہ کسی اور کا نہیں بنے گا، وہ آپ کا نہیں بن سکتا، وہ کسی اور کا کیسے بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کان کھول دیے کہ سوچ کے ان کی طرف دوستی کی بات کرنا، محبت کی کرنا، ورنہ یاد رکھو ہوگا کیا کہ تلکون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف مودت، ود سے ہے لفظ، تم ان سے بڑی محبت کی باتیں کرتے ہو، لیکن وقت کفرو بما جاءکم من الحق، کی انہوں نے اس کا کفر کر دیا جو تمہارے پاس حق کے ساتھ آ گیا۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے اس کے اندر کہ تم ان سے کیوں نہ محبت کرو، کیونکہ یہ تمہارے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوں گے۔ تلکون کا لفظ دیکھیے، لقیہ یا لقا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ڈالنا کسی چیز کو اس کی طرف ڈالنا۔ یہاں اشارہ کیا ہے اس سے؟ مراد ہے کہ لا تتخذو، کہ تم ان سے محبت نہ کرو، اس طرح کی محبت کی باتیں نہ کرو، ان کو تسلیاں نہ دلاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے، بلکہ تم اپنی آئیڈینٹیٹی کو قائم رکھو، تم ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرو کہ جس کی وجہ سے یہ کل تمہیں سیدھے راستے سے بہکا دیں۔ فرمایا، وقت کفرو بما جاءکم من الحق کی یخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، یہاں آپ کو ایک بہت بڑے سوال کا جواب مل جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ آخر مسلمان کہتے کیا ہیں کافروں کو؟ سچا مومن کیوں برا لگتا ہے لوگوں کو؟ ایک ایمان والا کیوں برداشت نہیں ہوتا؟ کیوں پابندیاں اس پہ لگتی ہیں؟ کیوں اس کو اجازت نہیں ملتی؟ کیوں اس کو ایئرپورٹس پہ روک لیا جاتا ہے؟ کیوں ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے؟ کیوں ایسے کردار کو ہوا بنا کر سارے میڈیا پہ اچھالا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انتومنو باللہ ربکم، یہ جو لفظ ہے نا، انتومنو باللہ ربکم، یہ طاقت کی گولی ہے۔ جس بندے کے اندر اللہ پر ایمان آتا ہے نا، اور جو اللہ کو رب مانتا ہے، تم نہیں میرے رب، اللہ میرا رب ہے، مجھے تم سے مدد نہیں چاہیے، رب سے چاہیے، مجھے تم سے ایڈ نہیں چاہیے، رب سے چاہیے، مجھے ہتھیار تم سے نہیں چاہیے، اللہ سے چاہیے، تو ایسا بندہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ کافر اس کو ہضم ہی نہیں کر سکتا۔ ہر بندہ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ थोड़े दर्जे पे या बड़े दर्जे पे हर इंसान के अंदर ये चीज़ छुपी हुई है कि मैं बड़ा बनूं, अना खैरुम, मैं बेहतर हूँ। अना का जज्बा जो होता है ना, ये बंदे को बड़ा करता है। आप देखिए कि माँ जब बच्चे को फीड कराती है ना, तो उसकी अना को तस्कीन मिल रही होती है, देखा ये मैं ही इसको करा सकती हूँ, ये बच्चा मेरे ही हाथ से खाता है। गुस्सा भी आए, रोना भी आए, थकी भी हो, फिर भी अंदर उसके तस्कीन ज़रूर होती है कि ये मेरे हाथों पे पल रहा है। शौहर बीवी को खर्चा दें घर का, उसके अंदर एक तस्कीन होती है। दुनिया के लोग ये चाहते हैं कि लोग उनके डिपेंडेंट रहें। जब एक बंदा अल्लाह से जुड़ता है ना, तो वो नफ़े और नुकसान का मालिक अल्लाह को बनाता है। वो लोगों को लोग रखता है, अल्लाह को अल्लाह रखता है। वो हकूकुल्ला और हकूकुल इबाद को घटमट नहीं करता। अल्लाह के हक अल्लाह को देता है, बंदों के हक बंदों को देता है। नतीजा क्या होता है कि वो लोग नाराज़ होने लगते हैं जो चाहते हैं कि ये तुमसे अपना आप मनवाएं। नतीजा क्या निकलता है कि फिर वो नाराज़ होते हैं। ये ऐसे जैसे कल तक आप किसी एक से कुछ एक दुकान से चीज़ लेते थे ना, अब आप वहाँ से लेना छोड़ दें, उसको गुस्सा आएगा, किधर गए जी, अब तो आप आते ही नहीं। और फिर वो फ़ौरन देखेगा अब आप कहाँ से चीज़ें लेते हैं, आप उस स्टोर पे। तो वो बेवकूफ़ ऐसा हो कि वो अपनी क्वालिटी बेहतर करने की बजाय, अपनी चीज़ को सस्ता करने की बजाय या अच्छा करने की बजाय, वो उस दुकानदार का दुश्मन हो जाए और आपका भी हो जाए। हाँ जी, बस आप तो बदल गए, बस इसी को ले लें। अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं। लेकिन हम जब लोगों से चीज़ें लेने की बजाय वो अल्लाह के स्टोर से लेने लगता है ना, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। लोग खुश होते ही नहीं है जब तक आप कुछ हिस्सा उनको अल्लाह का भी ना दे दें। बीवियाँ खुश होती नहीं जब तक शौहर उनको कुछ हिस्सा अल्लाह के हक का भी ना दे दें, और शौहर खुश होते ही नहीं जब तक बीवियाँ उनको अल्लाह के हक में से कुछ ना दे दें। और इसी पे कियास कर ले आगे बहनों भाइयों रिश्तेदारों ससुराल मैके को, लोग चाहते हैं कुछ अल्लाह का दो, नहीं अंतु मिनु बिल्लाहि रब्बिकुम, बस हमने तो रब को रब का देना है, बंदों को बंदों को देना है। चीज़ें अपनी जगह पे आने लगती हैं दीन पढ़ने के बाद, दीन को समझने के बाद।